अब चूंकि पीछे बहुत निफाक का तस्करा हुआ तो अब मुनाफ़त का इलाज बताया जा रहा है और वो क्या है, तदब्बुरुल कुरान। अफला या तदब्बरूनल कुरान, वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाही लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये कुरान में गौर नहीं करते? तदब्बुर कहते हैं किसी चीज़ के पीछे लग जाना, दुबुर से है ये लफ्ज़। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें कितना कॉन्ट्राडिक्शन होता, कितना इख्तलाफ होता, जबकि इसके अंदर बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन ये 23 साल में नाजिल हुआ। आज भी आप सूरत फातिहा से नास तक 30 बारे पढ़ें, कभी ये नहीं होगा कि शुरू में जो बात थी वो आखिरी बारों में पहुँचते हुए बदली गई। और आपको इस कुरान को पढ़ते हुए बिल्कुल एहसास भी नहीं होता कि ये बचपन की बात थी, ये जवानी की थी, ये अब कमज़ोर बात थी। हम खुद अपने ऊपर भी देखें तो हमारी 23 साल के अंदर तो कितनी कंडीशंस आ जाती हैं। तो पता क्या चला कि इस कुरान को गौर व फिक्र से पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह तदब्बुरुल कुरान के नाम पे हमारे पास एक पूरा सेट है जिसमें बहुत सारी सूरतें बन चुकी, आ भी चुकी ऑन एयर। 30वां पारा उसका यूट्यूब पे भी मौजूद है। सिर्फ हल्का फुल्का सा अंदाज, कोई उसमें सख्त बातें नहीं होती। नए लोगों को सुनवाने और ख़ुद अपने आप को अल्लाह से करीब करने के लिए वो बहुत अच्छा है। कभी भी उठते बैठते शुरू कर दीजिए और एक एक सूरत करके सुनते जाएंगे, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। फिर आगे अगली आयत जो है 83-84, उसमें बिला तहकीक के ख़बर को आगे ना बढ़ाओ। माजरत के साथ, कल तक तो ये काम औरतों के नाम पे लगता था जी, औरतें आगे से आगे बात कर देती हैं। जब से सोशल मीडिया आम हुआ, व्हाट्सएप और फलां फलां मैसेज, खुद पढ़े बगैर उसकी तहकीक किए बगैर बात को आगे बढ़ा देते हैं। कितनी र्यूमर्स फैलती हैं। पहले तो खबरें अफवाहों की सूरत में इवनिंग न्यूज़ में फिक छपती थी, अब तो हर बंदा इसमें। आप और मैं यहाँ बस इतनी सी बात करके आगे चले जाते हैं कि मैंने हर बात आगे नहीं करनी। हम तोते तो नहीं हैं कि वही बोलने लगें जो वो दूसरे बोलते हैं, जो दूसरे करते हैं हम भी वही करने लग जाएं। तो हमेशा चीज़ों को बेहतरीन तरीके से तहकीक के साथ करनी चाहिए। फिर आयत 85-87 का टॉपिक है कि अच्छी दावत सदका जारिया है और बुरी दावत गुनाह जारिया है। मैं यशफा शफातन हसनतन, अच्छी सिफारिश क्या होती है कि किसी को नेकी की दावत दे दीजिए, खैर की बात है तो वो बता दें, और बुरी दावत क्या है, किसी को गुनाह की रग़बत दिला दें, वो वहाँ ये है फलां फिल्म बहुत अच्छी है, आपने ये सुना, को बुरा फैशन इंट्रोड्यूस करा देना, कि बुरा ट्रेंड निकाल देना, अल्लाह ने इससे रोक दिया। और आगे आयत 86 को अगर आप देखें तो सलाम करना तो मुस्तहब है लेकिन उसका जवाब देना वाजिब है। यानी अगर कोई आपको सलाम करे तो आपने जवाब देना है। वैज़ा खुशी तुम भी तहीतिन फ़ैसा, आज हम सलाम करने में भी थोड़े से बखील हो गए, कभी तो हेलो हाय बाय करने लगे और सलाम भी करेंगे तो बहुत स्पार्ट सलाम अलैकुम, यानी कोई मोहब्बत नहीं, कोई शीरीनी नहीं है। तो कोई सलाम करे अस्सलाम अलैकुम तो आप उसको बढ़ा कर कहिए अस्सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। यानी सलाम एक बोंड है एक अजनबी को अपना बनाने का। तो घर में दिन रात में हर आने वाले को, इवन सुबह उठते हैं कमरों में से सब अपने अपने निकलते हैं, अस्सलाम अलैकुम सलाम को आम कीजिए। क्योंकि इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत, कह लीजिए कि इस्लामी शुआर भी है, मग़फ़रत को वाजिब करने वाला अमल भी है और अमन की अलामत है। यानी डोंट फियर, मेरे से ना डरो, मैं अमन वाली हूँ, मैं कोई आपसे लड़ने वाली नहीं। फिर चौथी चीज़ क्या है कि बाहमी मोहब्बत का ज़रिया सलाम। पांचवी चीज़ क्या है कि ईमान की तकमील का ज़रिया इस्लाम है, जन्नत के हसूल का ज़रिया है। तो आज से नियत करते हैं कि हम अपने घरों में इस्लाम को आम करेंगे। फिर आयत 85-87 का टॉपिक है कि अच्छी दावत सदका जारिया और बुरी दावत गुनाह जारिया है। बी कॉन्शियस, बी माइंडफुल, मोमिन बेकार नहीं होता, वे सोचे समझे हर चीज़ को आगे नहीं करता। कोई चीज़ आप तक पहुँचती है, अच्छी है तो ज़रा सा सोचिए कि जिसने मुझे भेजी उसने औरों को भी तो भेजी होगी। लेट सी आई विल डू, मैं क्या करती हूँ कि मैं खुद इस पर अमल कर लूँ। अपना मुहासबा कीजिए, अपना अमल कीजिए और थोड़ी देर उसको रोक दें, क्योंकि आप देखेंगे सेम पोस्ट 20-20 ग्रुप्स में आई होती है और उसमें अक्सर सारे ही लोग होते हैं। इससे बचिए। कोई बहुत अच्छी बात है उसके साथ अपने किसी अमल को जोड़कर कोई बात करके आगे कीजिए कि ये ऐसे है ये ऐसे है, एज इट इज़ चीज़ों को बस फॉरवर्ड करते जाना। रमज़ान आया तो रमज़ान मुबारक एक पोस्ट है और जुमा आ गया तो जुमा मुबारक, ये इस्लाम का असूब नहीं है। फिर इसके बाद आगे अगर देखें तो आयत 88-89 में منافقین کا ہجرت سے گریز۔ ظاہر ہے کہ دل میں کھوٹ ہو تو اسلام کے راستے میں قربانیاں کون دے، اور ہجرت سے بڑی نیکی کوئی نہیں دکھتی، اور ہجرت سے مشکل کام بھی کوئی نہیں دکھتا، کیونکہ لوگوں کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، اپنا کمفورٹ آف ہوم ہے۔ آج آپ دیکھیے، ہم مسلمان اپنے گھروں سے نہیں چپکے ہوئے، ہم ساری زندگی ایک جگہ رہ کے گزار دیتے ہیں، کون اٹھے، کون دوسرے شہر جائے، کون دوسرے ملک جائے۔ حالانکہ اسلام پھیلا تھا جب صحابہ نے مدینہ چھوڑا اور ہر نئی جگہ پہ پہنچے اور اپنے قول، عمل، اپنی چیزوں سے لوگوں کو اسلام سے جوڑا۔ تو اگر کہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے کوئی جگہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام، کوئی جگہ، کوئی چیز چھوڑنی پڑے، تو یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور اگر ہم کہتے چپ کر کے بیٹھے رہو، بلکہ یا تو میں وہ ہجرت بھی کہوں گی کہ جو بہت ساری خواتین کرتی نہیں ہیں، پتہ ہے کہ مرد میں بہت ساری برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، چوری چکاری کے علاوہ شرک کو تو ہم برا سمجھتے نہیں، لیکن ساتھ شرعی عیب بھی ہوتے ہیں مرد میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہیں، کیا اب کدھر جائیں، تو بھائیوں کے گھر جائیں، ماں باپ کے گھر جائیں؟ دیکھیے، یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ آپ پہلے سے اپنے بچوں کے رشتوں کو کرتے وقت 10 دفعہ سوچئے، تحقیق کیجئے کہ بیٹی کس کو دے رہے ہیں۔ لیکن غلط ماحول میں صرف اس لیے پڑے رہنا کہ اب ہم کدھر جائیں، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد ہجرت نہ کرنے والے منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، یہ ہمیں آیت 90 سے 91 میں دکھتا ہے۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، یعنی میں ادھر سے لے کے اگلی آیات کو کہہ دیتی ہوتی ہوں اکثر، اسلام کی خارجہ پالیسی، فورن افیئرز آف اسلام۔ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے ایکٹ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر آیت 92 میں قتل خطا کا کفارہ بھی ہے، یعنی کسی کا قتل بائی مسٹیک ہو گیا۔ اب غلطی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، نیت اور ارادہ قتل کا نہیں ہوتا، بس ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور کی غلطی سے بس الٹی، اس میں 8-10 لوگ مارے گئے، تو یہ بھی قتل خطا میں آتا ہے۔ تو ایسی چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا سنائی، آیت 93 میں آتا ہے، قتل ناحق کا وبال کیا ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یعنی جان بوجھ کے، یہاں متعمد ہے، قتل حق ہے، یہ ناحق نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ قتل عمد کی سزا کیا ہے، کہ جان بوجھ کے آپ نے وہ کیا ہے، تو اس پہ تو یا تو حد لگے گی یا پھر اللہ سے معافی مانگی جائے گی۔ یعنی اسلام دوسرے کی جان لینے کا آپ کو مجھے بالکل بھی اختیار نہیں دیتا۔ پھر اگلی آیت میں ایک واقعہ ہوا تھا اللہ کے نبی کے دور میں، 94 آیت میں، اس کی بنیاد پہ ایک اصول دے دیا کہ سلام کرنے والے کو بلا تحقیق کافر نہ سمجھو۔ ایک جنگ ہوئی تھی، یعنی مسلمان سفر میں تھے، تو ایک شخص کو انہوں نے جب دیکھا تو وہ کفر پہ تھا، لیکن ان کو دیکھ کے اس نے سلام کر دیا، تو یہ سمجھے کہ شاید انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر دیا، اور وہاں پھر معاملہ بگڑ گیا۔ تو یہاں آپ کے میرے لیے ایک عمل آج کے دور میں تو خاص طور پہ، کہ بات بات پہ دوسروں کو کافر نہ کہو، بات بات پہ دوسروں کو جہنمی نہ کہو، کیونکہ آپ کو دلوں کا حال نہیں پتہ۔ آگے آیت 95-96 میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت ہے، آپ سب کو اس میں بہت خوشخبریاں ملیں گی۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یعنی جو گھر بیٹھا رہے اور جو کسی رستے میں نکلے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ مرد جو بستر پہ ہی لیٹا رہے، گھر سے نکل ہی نہیں رہا، اور ایک بیچارہ صبح 7-8 بجے نکل کر حلال کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رستوں میں نکلنے والے اور بی اموال ہی وان فوسی ہم، جان اور مال لگانے والوں کو اجر نہیں دے گا؟ مراد یہ کہ جو کرے گا وہ بھرے گا، اور خاص طور پہ جس میں بات آیت 96 میں آتی ہے، درجات منہ و مغفرہ و رحمہ، تین چیزیں اللہ درجے بلند کرتا ہے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ تو پچھلی زندگی کے گناہوں کے کفاروں کے لیے اللہ کے رستوں میں پسینہ بہائیے، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جہاں خون دینا پڑ جائے اور جان چلی جائے، لیکن آپ کا میرا وقت لگانا، اپنی نیند چھوڑنا، اپنے گھر کے کمفرٹ سے نکلنا، گاڑیوں کا پٹرول جلانا، انشاءاللہ فضیلت کا ذریعہ بنے گا، اور جتنی جدوجہد کریں گے اتنی فضیلت زیادہ ہوگی، آپ کا جنت میں رینک بڑھے گا۔ آج بھی جہاز کا ٹکٹ، ایک ہی جہاز ہے، पहुंचना भी एक ही वक्त पे, चलना भी एक ही वक्त में, लेकिन फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी का फर्क है। तो ये फर्स्ट क्लास वालों को जो सहूलतें मिलती हैं उसके लिए उन्होंने ज़्यादा पे किया। अगर आपको मुझे वहाँ के लिए कुछ सहूलतें चाहिए तो उसके लिए कोशिश करनी है। फिराज 97 से 99 में अल्लाह की राह में हिजरत ना करने वालों का इंजाम बताया जा रहा है। देखिए, हिजरत का मौजू बहुत अहम है, क्योंकि अब हमारा वो कल्चर नहीं है, हमने उसको सोचा वो हिजरत मदीना थी, अच्छा वो पाकिस्तान इंडिया की सेपरेशन पे कुछ लोगों ने हिजरत की थी। हालांकि ये हर लम्हे का अमल है, अल्लाह की नाफरमानी की चीज़ को छोड़ना हिजरत है। आपके नफ्स पे जो चीज़ बोझल लगती है लेकिन आपने उसको छोड़ना है, तो ना छोड़ेंगे तो 97 से 99 में मौत का वक्त है। इन्नल्लज़ीन तवफ्फाहुमुल मलाइका, जब ऐसे लोगों को फरिश्ते फौत करते हैं, कौन से लोग, ज़ालिमी अनफुसीम, यानी जिन्होंने बुराई के माहौल में रह कर भी अपने नफ्सों पे जुल्म किया और घर माल मोहब्बत इन चीज़ों में जगह ना छोड़ी। फरिश्ते पूछते हैं, कालू फीमा कुंतुम, किस हाल में थे? कालू कुन्ना मुस्तदफीन फिलर, क्या करें, हम तो मिनोरिटीज़ थे, अकलियत थे, मैं तो मजबूर थी, मेरा शोहर बड़ा जालिम था, कोई भी टोन हो सकती है। कालू अलम तकुन अर्दुल्ला ही वासिया, क्यों भाई क्यों पड़े रहे, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी? और आगे फिर फतुहा जिरुफीहा, तुम हिजरत करते? यानी ये मुकालमा है मौत के वक्त में फरिश्तों और उस जाने वाले शख्स का जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत नहीं करता। आयत 100 में बता दिया कि हिजरत में दुनिया और आखिरत की कामयाबी। वक्ती तौर पे मुश्किल लगती है चीज़, बाद में अल्लाह उसमें खैर देता है। अगर मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना ना आते तो क्या इतनी दौलत मिलती? ईमान की, प्यार की, मोहब्बत की, और मक्का में जुल्म सह सह के ख़त्म हो जाते। तो क्या पता चला आयत 100 में, वमई जो हाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्दी मुरागमन कसीरा, कैसा बंदा जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा उसको बहुत वसतें मिलेगी। और ये बात तो प्रूवन है, मुसलमान जब अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ता है अल्लाह उसको पहले से भी अच्छी चीज़ अता करता है। आगे से फिर अब इस सूरत में कुछ अहकामात नमाज से मुतल्लिक हैं। मसलन आयत 101 में कसर नमाज का हुक्म है। आप देख रहे हैं कि सूरत निसा कितनी प्रोफाउंड सूरत है, इसको डिटेल से पढ़िए सुनिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारे अहकाम आपको मिलेंगे। तो सफ़र में कसर की जाती है। अब कसर क्या है कि दो नमाज़ों को जमा कर लें या फिर असल नमाज की रकतों को थोड़ा करें, इसमें बहुत सारी फ़िकी चीज़ें हैं। आप कोई भी हदीस की किताब लें, तफ़ीमुस्सुन्ना ले लीजिए, किताबुस्सलात, नमाज नबी बुक ले लीजिए, शफीकुर्रहमान साहब की है, यानी कुरान सुन्नत की रोशनी में बड़े प्यार से आपको ये सारे मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरह अगली आयत में 102 में सलातुल खौफ का तस्करा है। और सलातुल खौफ से क्या मुराद होता है? खौफ की नमाज। ये कब पढ़ी जाती थी? पहले दौर में अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, आपके सहाबा ने भी पढ़ी, जब सामने जंग लग रही होती थी, दुश्मन इधर भी है उधर भी है और नमाज का वक्त आ जाए, एक लम्हे की गफलत खतरनाक साबित होती थी। अब ऐसे वक्त में वो जमात नहीं छोड़ते थे। सवाल लिखिए, मैदाने जंग में जाकर कौन जमात से नमाज अदा करेगा? जो आम घर पे अपने बिस्तर से उठकर फजर के लिए जाएगा, जोहर पे जाएगा, दुकान बंद करके हर नमाज पे नमाज का वक्फा लगाएगा। तो हमें अपने मर्दों को ख़ास तौर पे जमात की नमाजों की रग़बत दिलानी है। फिर आयत 103 में भी नमाजी का मौजू है कि नमाज पाबंदी वक्त के साथ। फ़ैज़ा क़ज़ई तुमुस्सलात फ़ज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, क्या पता चला कि इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताब व मौकूता। आपके मेरे लिए भी ये एक अमल का नुक्ता है, जो काम कर में कर रहे हैं उसको छोड़ के नमाज पढ़ लीजिए। हम खवातीन किचन में खड़ी हो जाएं तो नमाजें डिले करती हैं, अच्छा ये कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ, भाई नमाज का वक्त अचानक तो नहीं आया। सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की नमाजों के औकात को देखा करें, बल्कि उसको अपने स्क्रीन के फ्रंट पेज ना उस पर सेव कर लें। जो काम शुरू करने लगे, सफाई सुथराई, कपड़े बर्तन, खाना पानी, टाइम देख लीजिए, अच्छा अगली नमाज के आने में भी 1 घंटा, ठीक है इस 1 घंटे में जो हो रहा है वो करती हूँ, फिर जब वक्त आएगा नमाज का एक गैप लूँगी और फिर अगला काम करूँगी। आप देखिए एक इंटरवल है आपके लिए सहूलत है, वरना तो सारा दिन ही आप खड़े रहें। तो अपनी नमाजों को इंशाल्लाह हमने इस रमज़ान में और आम तौर पे भी इसको ठीक करना है। फिर आगे आयत 104 में मुसलमान और काफिल के अमल का फ़र्क बताया जा रहा है। वला तखिनफ इब्तिगाई कौम कहकर क्या पैगाम है कि मुजाहिद की ज़िंदगी में नाकामी का तसव्वुर ही नहीं है। मुसलमान कभी नहीं हारा, या फतह होगी या शिकस्त, लेकिन अजर दोनों सूरतों में अल्लाह ताला के ऊपर वाजिब हो जाता है बंदे का, यानी अल्लाह ताला उसको अजर अता करते हैं। फिर आयत 105 106 में अदल करो, खयानत करने वालों की तरफदारी ना करो। यहाँ से बेसिकली एक वाक़या शुरू हो रहा है जो दो तीन रुकू के अंदर मुहित है। अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में कुछ लोगों ने अपने ख़ानदान की हिमायत में बिरादरी का नाम लेकर एक झूठे शख्स की वकालत की। अल्लाह के नबी को अगर अल्लाह ताला इन आयात में ना गाइड करते तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे तरफ निकल जाते। तो यहाँ इस आयत में इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक से लेके आगे तक मैसेज क्या है कि अदल के मामले में तासुब ना करो। अगर गलत काम करने वाला तुम्हारी अपनी बिरादरी का शख्स भी है तो तुम उसको बुरा कहो। और आयत 107 से 109 में वला तुजादिल, यानी झगड़े ना करो। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम है कि ये बताओ कि अगर आज तुम उनकी गलत हिमायत कर लोगे, फमई युजादिलुल्लाह अनहुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कौन झगड़ा करेगा उनके बारे में अल्लाह के सामने, और कौन उनका वकील होगा? तो बस चाहे बच्चे का कसूर है, मानिए, दो बच्चों में आपके बच्चे की गलती है, अपने बच्चे को झूठा कीजिए। और इसी तरह माँ और भाभी के अंदर झगड़ा हो गया, भाभी का कसूर नहीं है, माँ का कसूर है, तो भाभी का साथ दीजिए और माँ को बड़ी मोहब्बत और एहतराम से समझाइए कि ऐसे नहीं करते। फिर इसी तरह से एक और चीज़ आयत 107-9 में हमें पता चलती है कि गुनाह करते वक्त इंसान अगर ये ख्याल जहन में ज़िंदा रखे कि इस जुर्म का इर्तकाब उस मुनसिफ और उस ज़ात के सामने पेश कर रहा हूँ कि जो अलीमुल बिज़ाते सुदूर भी है, जिसको सब पता है, समी अल बसीर है, तो वो कभी गुनाह नहीं करेगा। यानी अल्लाह सुबहान ताला मुझे देख रहा है, इस कैफियत के साथ रहते हुए ज़िंदगी के मामलात कीजिए। आयत 110 से 112 में गुनाहगार मायूस और नाउमीद ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसलिए फरमा दिया अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, क्योंकि अल्लाह ताला कौन है? गफूर रहीमा। ख़ास तौर पे नए नए दीन की तरफ आते हुए लोगों को ऐसी आयात से रग़बत दिलाया करें कि आपसे अगर बहुत से गुनाह भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमाने वाले हैं। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का बड़ा फ़जल था। उसी वाक़े का ये एंड अप है, ततीबा है, या उसको समराइज़ किया जा रहा है कि वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैक, यानी अल्लाह ताला अपने नबी से कोई फ़ैसला गलत नहीं करवाते, ऐन वक्त पे फरिश्ते को भेजकर ये आयात नाजिल कर दी और आपने फिर जो झूठा था उसको झूठा करार दिया और जो सच्चा था उसको सच्चा करार दिया। फिर आयत 114 में नजवा की पसंदीदा सूरत है, चुपके चुपके बातें करना। ला खैरा फी कसीरे में नजवा हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया जहाँ तीन लोग हों तो दो लोग आपस में बातें ना करें, तीसरा गम में पड़ जाएगा कि पता नहीं मेरी बात करें। और ये हम सबको भी याद रखना चाहिए पार्टीज़ और महफिलों में और राउंड टेबल्स के इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को देख देख के उन पर कमेंट्स करना ये पसंदीदा नहीं है। हाँ, अगर चुपके से कोई बात करनी है तो वो कोई इसलाह की जा सकती है, कोई सदके की बात की जा सकती है। बस इस वक्त आपके मेरे लिए इसमें अमल क्या है कि दूसरों को दुखी करते हुए चुपके चुपके बातें नहीं करनी। फिर आयत 115 भी अहम आयत है, बहुत ही अहम पिलर है बल्कि इस आयत सूरत का, कि वह मैं युशाक के रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल खुदा, जिसके बारे में ये पता चल गया कि ये अल्लाह के नबी की मुखालफत कर रहा है, हिदायत भी सामने आ गई है और अल्लाह के नबी का रास्ता या सबील अल मोमिनीन छोड़कर दूसरी तरफ जाता है, तो फिर हम उसको उधर ही फेर देंगे जिधर वो फिरता है। इसको इजमाई उम्मत कहते हैं, यानी जिस चीज़ पे उम्मत का इजमा हो जाए उसके लिए कुरान से भी दलील ली गई, यहाँ हदीस में भी मिलता है। पता क्या चला कि जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करता है अल्लाह इसको अपने हाल पे छोड़ देता है, और जिसको अल्लाह उसके हाल पे छोड़ दे इससे बड़ी सज़ा क्या होगी। यानी जब हमारे सामने कुरान और सुन्नत की कोई दलील आ जाए तो बस उसको मानना है, अगर छोड़ देंगे तो अल्लाह फिर हमें छोड़ देगा। आयत 116 से 117 में शिर्क का जुर्म माफ़ नहीं किया जाएगा, इस मौजू को दोबारा लिया गया। आप देख रहे हैं कि पीछे भी आयत गुजर रही है कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक। कहते कि एक इमाम साहब किसी मस्जिद में थे तो लोगों ने उन पर एक एतराज़ किया कि ये हर वक्त शिर्क पे दर्स देते हैं। अब जो मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने भी बात की कि आप ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है मैं एहतियात करूँगा। अगला दिन हुआ तो ये मस्जिद में आए तो कहने लगे, आज तो बाहर बहुत बड़ा जुल्म हो गया, लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। भाई क्या हुआ? कहा देखो लोग एक दरख्त के नीचे बैठे उसको सजदा कर रहे थे। लोगों ने इधर नोटिस नहीं लिया, अच्छा ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अगले दिन भी आए तो कुछ ऐसी ही बात बनाई, देखो लोग वहाँ एक कुएं के पास बैठे हुए थे और वहाँ किसी को सजदा कर रहे थे। यानी 3 दिन तक वो कोई ऐसी बात करते रहे कि जिसमें जिसका ताल्लुक शिर्क से था, लेकिन जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं हुए। अगला दिन हुआ तो कहने लगे, आज तो बहुत ही ख़राब बात होगी। कहा क्या? कहा एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था। अब ये सुन के लोग जो थे वो गुस्से में आ गए, किधर है, कौन है, हम जाके इसको पकड़ते हैं। तो उन्होंने कहा देखो 3 दिन तक मैं तुम्हें शिर्क से मुतलिक बात बताता रहा, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया, और आज एक लड़के के लड़की की बात पे तुम्हें गुस्सा आ गया, इसका मतलब तुम्हें अभी शिर्क को मजीद जानना है, तुम्हें अभी शिर्क का गुना पता नहीं। तो मैंने ये बात इसलिए सुनाई कि हमें भी शिर्क के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होने की ज़रूरत है। और शिर्क क्या है? अल्लाह की बंदगी से निकलना, यानी अल्लाह का बंदा बनने के बजाय माल का बंदा, नफ्स का बंदा, अब्दुद दीनार, अब्दुद दुनिया बन जाना, और इसी तरह गैर अल्लाह के आगे हाथ फैला देना, किसी से लेना, किसी मुर्दा से मांगना, ये सब शैतान के नापाक अजायम है। इसीलिए आयत 118 से 119 में अल्लाह ताला ने शैतान की ये बारे में वो आयत पेश की कि जिनको अगर हम जान लें तो हम कभी भी अपने बच्चों को शैतान ना कहें। यानी इस पे भी हमने अपने दूसरे दौरे कुरान में काफ़ी डिटेल से बात की है, आप उसको भी यूट्यूब से जाकर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं कि ये शैतान का एक एजेंडा है। क्या है ज़रा सा इसको गो थ्रू कर लीजिए। आयत 118-119 में शैतान ने ज़ोर से कहा था, वाला उदिल्लन्नहु, मैं इनको ज़रूर बहकाऊंगा। अब आप अपने बच्चे को जिन में लाए और आपके जवान बेटे के बारे में शैतान कह रहा है, मैं आपके इस बेटे मोहम्मद और अली और जो भी उसका नाम है इसको ज़रूर बहकाऊंगा और इनको बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा, आपको कैसा लगेगा? अब ये बातिल उम्मीदें क्या हैं? वो बातिल उम्मीदें जो शैतान वसवसों के ज़रिए और दखल अंदाजी के ज़रिए फैलाता है, इंसानों की गुमराही का ये सबब बन जाता है। अल्लाह कहते हैं शैतान के सब वादे झूठे हैं और अल्लाह का वादा सच्चा है। आयत 120 से 122 में शैतान की इन सारी उम्मीदों पे ओस डाली जा रही है कि तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन वल्लज़ीना आमनु वामिलु सालेहात, जो ईमान वाले हैं और अमल साले करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको तुम्हारे शर से भी बचाएंगे और जन्नतों में दाखिल करेंगे। तो क्या पता चला आयत 123 और 124 में कि खुशकुन ख्वाहिशात काम नहीं आएंगी। असल बात यह है कि इंसान इस चीज़ की फ़िक्र करे कि मैंने अल्लाह ताला को कितना राज़ी किया है। आप और मैं ये कह दें मेरी ख्वाहिश है मैं जन्नतुल्फिरदौस में जाऊँ, बहुत अच्छी ख्वाहिश है, क्या करना पड़ेगा? अमल करना पड़ेगा ना। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो खुश फहमियों में मुबतला होने की बजाय, अपनी कम इल्मी की बजाय अमल करना चाहते हैं, और इसके बरक्स जो कम फहम लोग हैं, कम इल्म लोग हैं, वो अमल की जगह सिर्फ आरजुओं पे भरोसा रखते हैं। जन्नत की ख्वाहिश से भी जन्नत मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि साथ कोशिश की जाए। तो खुलासा क्या निकला कि आखिरत की कामयाबी महज उम्मीदों और आरजुओं से नहीं मिलेगी, इसके लिए आमनू वामिलुस सालेहात की पूंजी साथ लेकर जानी है इंशाअल्लाह ताला।